السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم صفات ہی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات میں ہم نے دیکھا کہ ہم صفات الاصلیہ پڑھے ہیں, وہ صفات جو کہ حرف کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں, اور اس میں ہم فرسٹ پیئر دیکھ رہے تھے جن میں ہم ہمس والے لیٹرز کر چکے ہیں اور جہر والے لیٹرز دیکھ رہے تھے. تو جہر میں ہم نے دیکھا حمزہ, اور پھر اس کے بعد عین, اور پھر غین, کہ یہ لیٹرز جو ہیں یہ جہر کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اقصر لسان میں دیکھا کہ قوف بھی جہر کے ساتھ آتا ہے, اور وسط اللسان کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس میں سے تین لیٹرز آتے ہیں, شین میں ہم سے, اور یا اور جیم. یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جو کہ دونوں ہی جہر سے آتے ہیں, کہ ان میں جب آپ ان کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ ایئر کو بالکل بھی بلو نہیں کرتے, آپ بالکل ایئر کو امپریزنٹ کر کے ان حروف کو ادا کرتے ہیں. یا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یا میں ایک کامن ایرر ہے, یہ بہت سارے اسٹوڈینٹس میں پایا جاتا ہے کہ وہ یا کو ہمس کے ساتھ بولتے ہیں, اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ آپ رائٹ مخرج کو نہ استعمال کریں. یعنی اگر آپ وسط اللسان میں تھوڑا سا آگے سے ایریا یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم ساری ہوتی ہے, لائک جا, یہ باز, اور اس میں بزنگ اور اس طرح کی, اور سم ٹائمز اس میں ایری ساؤنڈ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یا کو وسط اللسان سے بولیں گے لیکن وسط اللسان کا تھوڑا سا پیچھے والا حصہ استعمال ہوگا, جس میں آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں حرف لین کے ساتھ. یعنی آئی تو جو ایریا یوز ہو رہا ہے یہیں سے آپ یا کو ادا کریں گے, ایا, اور پھر یا ایوہ النبی. تو اگر آپ کا مخرج پریسائز ہے, ایگزیکٹ لین والا ایریا استعمال ہو رہا ہے, تو پھر اس میں ہمس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وسط اللسان کا, وہ ہے ڈریم, اور ڈریم بھی جہر کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل لیٹر ہے. جب ہم نے اس کا مخرج دیکھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نا ایکول ٹنگ کو تھری ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو جو وسط اللسان ہے وہ سینٹرل پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کوئی نقطہ تو ہے نہیں, یعنی شارپ پوائنٹ تو نہیں ہے, یہ ایک ایریا ہے پورا. تو اس میں جو وسط اللسان آپ کا ادن اللسان کے کلوز ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں ایک بارڈر لائن آ رہی ہے نا, تو جو ایریا آپ کا ادن اللسان کے قریب ہے آپ وہ وسط استعمال کرتے ہیں, بہت پیچھے والا وسط نہیں استعمال کرتے, ٹھیک ہے. ایک تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ وسط اللسان کا تھوڑا آگے والا حصہ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ وسط اللسان بالکل پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے, گم ایریا کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے. جہاں سے ڈوم شروع ہو رہا ہے نا وہاں سے آپ کا پیلٹ شروع ہوتا ہے, ڈوم سے پہلے پہلے جو ایریا ہے وہ گم ایریا کہلاتا ہے. تو ایگزیکٹلی انیشیل پارٹ آف ڈوم میں آپ کا وسط اللسان جو سینٹرل پارٹ آف ٹنگ ہے وہ ایگزیکٹلی وہاں جا کے ٹچ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت پیچھے لے کر جانا نہیں ہے, کیونکہ عموماً اس میں جب اسٹوڈینٹس انیشیل پریکٹس کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت بیک سے بولنے لگ جاتے ہیں, لائک یا, تو یہ تھوڑی ایسی ساؤنڈ آتی ہے, یا یا, یہ ساؤنڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. نارمل آپ اس کو ریلیکس کر کے فارورڈ ہی بولیں گے. کو کے درمیان والا زبان کا حصہ ہے, مگر یہ وہ درمیان والا حصہ ہے جو کہ ادن اللسان کے کلوز ہے. اس میں پھر ایک اور چیز کا جو آپ خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا ہٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہر والے حروف میں جہر کو ادا کرنا بعض میجورٹی لیٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بہتر آپ کا ہٹ ہوتا ہے نا, اسٹرانگ ہٹ ہوتا ہے, اتنا آپ کو جہر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے حمزہ میں, قوف میں, ان لیٹرز میں بال کے ہٹ کی طرح کا ہٹ ہے, اسٹرانگ ہٹ ہے. جیسے آپ بال فلور پہ ہٹ کرتی ہے اور ایک ساؤنڈ آتی ہے اور پھر اس کے بعد ساؤنڈ آپ کو پلٹ کر نہیں آتی, تو اس اتنے اسٹرانگ ہٹ میں نا ایئر کو بھی راستہ نہیں ملتا کہ وہ بلو ہو سکے. تو اس لیے جب ہم ڈریم کو ادا کریں گے تو ہمارا ہٹ ایسا ہی اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کم بیک لینا ہے, جسٹ لائک اے بال, کہ وہ ہٹ کر کے نا فوراً واپس آ جاتی ہے. تو بالکل آپ کی ٹنگ بھی اوپر یعنی روف کے ساتھ پیلٹ کے ساتھ ہٹ کر کے ڈسٹینس لے گی, یوں کر کے اج اج, اور جب یہ ساکن ہوگا تو کلکلا کی ساؤنڈ ہے، اور جب یہ متحرک ہوگا تو بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، جا جا. آپ دیکھیں بالکل ایک ہٹ کی آواز آ رہی ہے، جی ڈو ڈو، اور اس میں ایئر نہیں ہے. اگر آپ اس کا ہٹ ویک کرتے نا، تو اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے، یعنی جی میں بہت زیادہ کامنلی ہم سننے میں ملتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہٹ کرتے اور ہٹ کر کے ٹنگ کو ڈسٹینس دینے کی بجائے بالکل روف آف ماؤتھ کے ساتھ ہی جوڑ کے نا ہلکی سی اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی ٹنگ اسٹل روف آف ماؤتھ کے اوپر ہے اور وہاں پہ وہ ہلکی سی اسپیس کے ساتھ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یوں بہت لوز سا ہٹ ہوتا ہے اور ہوا کو جگہ مل جاتی ہے کہ وہ پاس آؤٹ ہو. یعنی اج یا جا یا جی یا جو، یہ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، جا جی جو. تو یہ جو چا چا کی آواز آ رہی ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہٹ کے بعد نا اسٹرانگ کم بیک نہیں ہوا، بلکہ زبان وہیں روف کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بس اس نے ہلکی سی اسپیس کریٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے ساؤنڈ رن ہو رہی ہے اور بہت ساری ایئر بھی بلو ہو رہی ہے. تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا اچھا اسٹرانگ ہٹ ہوگا اور آپ کی ٹنگ کم بیک لے گی، یعنی اسپیس دینے کی بجائے مخرج سے ڈسٹینس کے اوپر جائے گی، اتنی اچھی آپ کی جہر ہوگی، یعنی اتنی اچھی ایئر بلو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، قوف کی طرح اقو قو، بالکل ویسے ہی اج جا جی جو. اوکے، اب نیکسٹ مخرج دیکھ لیتے ہیں. وسط اللسان کے بعد آ جاتا ہے حافت اللسان. حافت اللسان سے دو لیٹرز آتے ہیں، لام اینڈ ضاد، اور دونوں ہی جہر والے لیٹرز ہیں. لام کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو لام کا مخرج ٹپ کے ساتھ فرنٹل ون تھرڈ سائڈز آف دا ٹنگ انوالو ہوتی ہیں، اور یہ سامنے کے آٹھ دانتوں کے گمز کے ساتھ لگتی ہیں. اور عموماً لام میں ایز سچ بہت ہمز کا ایشو نہیں دیکھنے میں ملتا، لیکن جسٹ کیئرفل کہ پورا مخرج استعمال ہو رہا ہو نا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایئر اتنی بلو نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں الحمد الحمد، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس بہت زور سے دباتے ہیں اس کو پورے ایریا کو یوز کرنے کے لیے، تو آپ نے بہت زور سے نہیں دبانا، لائک ال یوں کر کے نہیں، بلکہ میڈیم مطلب آپ اس کو ہٹ دیں گے اور جہر کے ساتھ الحمد اللہ. ٹھیک ہے، اللہ علی الو، اس طرح سے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بود. بود میں بھی کامن ایرر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس میں بہت آرام سے جہر ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا کیئرفل بولنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جہر، سوری اس میں ہمس ہو جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا کیئرفل بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو جہر کے ساتھ ادا کر رہے ہوں. تو اگر ہم اس کا مخرج دیکھیں تو یعنی ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈز آف دا ٹنگ، اور یہ آخر کے چار یا آٹھ دانتوں اور ان کے گمز کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے نا، اور پھر آپ نے اس کو ہیوی کرنے کے لیے ڈیپ پارٹ بھی اوپر اٹھانا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا بریتھ چینل ہے وہ بند ہو. ٹھیک ہے، بریتھ چینل آپ نے اوپن نہیں رکھنا، نہ اس میں بہت آرام سے ایئر بلو ہو جاتی ہے. اور جیسے یعنی اگر آپ فار ایگزامپل بور پر سٹاپ کر رہے ہیں ورڈ میں الارض، تو ایسی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ایئر کو اس کو کنٹرول کریں کہ ایئر باہر کی طرف نہ آئے. الارض، ٹھیک ہے. اور جیسے ورڈ الضالین، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، دھو دھو یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں مخرج کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر مخرج سے بولیں، کیونکہ بعد میں باقی سارے ایشوز کے ساتھ یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ مخرج ہی پریسائز استعمال نہیں ہو رہا ہوتا نا، یعنی دال کی طرف سے ٹپ سے ٹپ استعمال ہوتی ہے. تو میک شور کہ آپ ڈیپر ایریا یوز کرے ہوں، یعنی جو پوسٹیریئر سائڈز ہیں ٹنگ کی وہ استعمال ہو رہی ہوں، اور پھر ان میں ایئر بھی بلو نہ ہو. اور خاص طور پر جب یہ ساکن ہوتا ہے اینڈ میں تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور ورڈ یہ کمبینیشن بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، یعنی را اور بود اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں، تو را میں چونکہ ٹپ استعمال ہوتی ہے اور بود میں بالکل بیک پارٹ آف ٹنگ یعنی پوسٹیریئر سائڈز استعمال ہوتی ہیں، تو ٹنگ سے پوسٹیریئر سائڈز کے اوپر جانا یہ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. تو اٹ ریکوائرز لاٹ آف پریکٹس کہ آپ ٹپ کو پہلے استعمال کریں، ہٹ کریں، अब और फिर उसके बाद आप पोस्टीरियर साइड इस्तेमाल करें। हाफतुल लिसान के बाद जो नेक्स्ट मखरज है, यानी आप जो है वो तरफुल लिसान के लेटर्स शुरू हो जाते हैं, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नून एंड रॉ, जो कि टिप ऑफ टंग जब गम्स के उभरे हुए हिस्से के साथ टच करती है तो ये दो लेटर्स अदा होते हैं। नून के अंदर तो ऑलमोस्ट नेचुरल जहर है, इसके अंदर तो हम्स हो ही नहीं सकती। जैसे आप बोलते हैं वर्ड इन या अनअमता, तो नून में हम्स नहीं हो सकती, इसमें नेचुरल जहर है। रॉ के अंदर हम्स का इशू बहुत ज्यादा देखने में आता है, तो रॉ को बहुत तवज्जो की भी और प्रैक्टिस की भी जरूरत है। एक्चुअली इनका मखरज एक दूसरे के बहुत करीब है। नून में आप शार्प टिप यूज करते हैं गम्स के उभार के साथ, और रॉ के अंदर टिप के साथ टॉप भी लगती है, यानी टिप प्लस टॉप ऑफ द टंग गम्स के उभार के साथ लग रहा होता है। तो इसमें रॉ में जो हम्स का इशू आता है वो ज्यादातर इस वजह से आता है कि आप साइड्स ऑफ टंग इन्वॉल्व कर लें, यानी आपकी जबान यू फैल जाए और फैल के जो जबान की साइड्स हैं वो भी दांतों के साथ लग रही हो, यानी टिप आपके मखरज पे है और साइड्स भी लग रही है, अर यू करके ना, रहमान, तो ये हम्स की का एरर इसके अंदर आ जाता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि जब लेटर को लाइट करना होता है तो हैवीनेस में और लाइटनेस में ये होता है ना कि जब आप लेटर हैवी कर रहे होते हैं तो आप डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग को ऊपर उठाते हैं, और जब आप लाइट करते हैं तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग को डाउन करना होता है, यानी आपने मखरज को नहीं हिलाना। रॉ को जब हैवी करेंगे या लाइट करेंगे तो हम मखरज नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हम डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग को इस्तेमाल करेंगे, हैवी करेंगे या ऊपर लेकर जाएंगे या उसको रिलैक्स रखेंगे, डाउन रखेंगे। तो इसमें होता यह है कि समटाइम्स आपका रॉ हैवी तो बहुत अच्छा आता है, यानी आप शार्प टिप यूज करते हैं, टिप एंड टॉप यूज करते हैं और डीपेस्ट पार्ट भी ऊपर होता है, तो अमूमन रॉ जो हैवी है वो स्टूडेंट्स अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब उन्हें रॉ बारीक बोलना होता है तो वो मखरज चेंज कर देते हैं, यानी रहमान अर। अब अगर आपका रॉ हैवी अच्छा है और इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है तो आप अपने रॉ लाइट की पोजीशन को चेक करें, यानी जब आप बोलते हैं अर और जब आप बोलते हैं ईर, तो क्या आपका एक ही पार्ट ऑफ टंग इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमूमन लाइट करते हुए ये होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी साइड्स लगें, तो अगर आपकी साइड्स लग रही हैं तो उसमें ऐसी साउंड आने लग जाएगी, लाइक वर्ड खबीर, ये साउंड आएगी खबीर, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। ये इसलिए आ रही है कि मैं ना पीछे से तो मैंने अपनी टंग को डाउन किया है, लेकिन मैं साइड से भी ना, यानी जो फ्रंटल पार्ट है जिसमें मखरज आ रहा है उसको भी मैं बहुत रिलैक्स कर रही हूँ, तो टिप मेरी यूं फैल गई है, टिप और साइड्स यूं फैल कर साइड्स के दांतों को लगने लग गई है ना, जिसकी वजह से ये एयर वाली साउंड आ रही है। तो अमूमन अगर आपका रॉ हैवी है, अच्छा आ रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, तो वॉच आउट योर मुरक्कक रॉ, लाइट रॉ को चेक करें कि उसके अंदर भी ये इश्यू नहीं होना चाहिए। तो रॉ को सारे पर्सपेक्टिव के साथ, सारी कंडीशंस के साथ, यानी हैवी और लाइट दोनों रॉस को चेक किया जाए कि उसमें किसी भी रॉ में हम्स ना आ रही हो। ठीक है, जहर लेटर है तो रहमान, खबीर, खबीर, यानी शार्प टिप को, टिप एंड टॉप को यूज करें, साइड्स को ना इस्तेमाल करें। इसके बाद यानी नून एंड रॉ के बाद जो नेक्स्ट लेटर्स हमारे पास आते हैं वो हैं हरूफ नकवाइया, ता, दाल एंड दो। हम जानते हैं ता महमूस लेटर है, हम्स के साथ है, और फहसहु शख्सुन सकत में आता है, जबकि दाल एंड तो ये दोनों लेटर्स जहर वाले हैं। दाल और तो दोनों में हम्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही लेटर्स जहर वाले हैं, और इन दो लेटर्स में जहर की वही टेक्निक है जो हम कुछ लेटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रांग हिट एंड अ गुड कमबैक। ठीक है, यानी जितना अच्छा आपका हिट होगा लेटर को जगह नहीं मिलेगी कि वो एयर को गुजरने दे, पास आउट होने दे, ठीक है, तो आपका लेटर अच्छा बोला जाएगा। और कॉमनली इन दोनों ही लेटर्स के अंदर हम्स का इशू देखने में मिलता है, यानी दाल है तो उसमें भी हम्स का इशू देखने में मिल रहा होता है, और अगर बॉ है तो उसमें भी हम्स का इशू देखने में मिलता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि जब हम इस्तादा पढ़ते हैं तो ये साउंड आ रही होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
ये जो साउंड है थ्रो की, दैट्स एयर, ठीक है, ये हम्स की आवाज आ रही है थ्रो के अंदर. तो एक्चुअली इट्स नॉट थ्रो, थ्रो की आवाज नहीं आनी चाहिए. इसी तरह दाल में भी अन झा की आवाज आती है, अन झा झा या झा वो झा, तो ये साउंड नहीं आनी चाहिए. तो दाल में भी आपने स्ट्रॉन्ग हिट करके गुड कम बैक करना है, अद अद. तो हिट जो है वो बाउंस ऑफ बॉल की तरह होगा, यानी जितना अच्छा आपका हिट होगा और आप अच्छा बाउंस बैक करेंगे तो आपका लेटर उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है. अद दा दा दी दू. मखरज का ख्याल रखें, प्रीसाइज स्टेप यूज करें. दाल में बहुत कॉमन एरर है कि टॉप ऑफ टंग इस्तेमाल हो जाता है, तो टॉप ऑफ टंग आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने प्रीसाइज स्टेप यूज करनी है, ठीक है. टॉप इन्वॉल्व करेंगे तो अमूमन हम उर्दू में ना टॉप यूज करने के आदी होते हैं, तो उससे जो है वो लेटर वीक हो जाता है. तो टॉप आपने नहीं यूज करना, आपने शार्प टिप यूज करनी है. प्रीसाइज गम लाइन के ऊपर थोड़ा स्ट्रांग हिट दें, अद दा दा दी दू, इसको झा झा करके नहीं, धी धू ऐसे नहीं, ठीक है. उसके अंदर फिर एयर आ जाएगी. कि अब हम देखते हैं लेटर बॉ को. लेटर बॉ भी दाल ही की तरह जहर का लेटर है, और इसमें भी टेक्निक वही है हम्स को कंट्रोल करने की, क्योंकि इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ना वर्ड हम बोलते हैं अशय थो, तो ये बहुत ज्यादा समटाइम्स स्टूडेंट्स इसके अंदर हम्स करे होते हैं. तो टिप ऑफ टंग को यूज करें, शार्पली उसको गम लाइन के साथ हिट करें, और प्रेशर थोड़ा आपका जो स्ट्रेंथ है ना हिट की वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये लेटर्स जैसे दाल है, तो है, कौफ है, हमजा है, ये कंप्लीटली रिलाय करते हैं मखरज के ऊपर. तो आपका हिट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं देंगे कि आपका लेटर नबर में जाए, लेकिन अच्छा हिट हो. और फिर दूसरा आपने क्या करना है, कम बैक लेना है. थो में करते हुए ना आप देखें कि जब आपकी सांस में जारी है वो असल में होता यही है कि टिक जो टिप है वो कम बैक नहीं ले रही, स्ट्रांग हिट कर रही है, मगर वापस आने की बजाय वो वहीं पर गम लाइन के साथ ही हल्की सी अटैच्ड है, और वो ना यानी वहीं पर रुकी हुई है, वापस नहीं आ रही, स्पेस ले रही है, और वो हल्की सी साउंड को रन करके साथ में एयर ब्लो हो रही है, ठीक है. तो इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लेटर बोलें तो लेटर के अंदर आपने कम बैक अच्छा देना है, टिप को हिट करके वापस पलटाएं, उसको बाउंस करें, जैसे बॉल का बाउंस होता है ना इस तरह से. इवन ये साकिन होगा तो भी ऐसे ही होगा, अत दो अत दो, और मुतहर्रिक होगा तो भी मखरज को आपकी टंग छोड़ देगी, यानी मखरज के साथ स्टिक नहीं रहेगी. अशैतानिर्रजीम फतदौला, ठीक है, फतदौला. तो शार्प टिप को यूज करेंगे. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारे पास आ जाता है हरूफुल लसविया का. हरूफुल लसविया में तीन लेटर्स हैं, सा जाल एंड वो. हम जानते हैं सा जो है वो महमूस लेटर है, इसके अंदर हम्स होती है, और जाल और वो दोनों लेटर्स में हम्स नहीं होती. अब जब हम हर्फ जाल बोलेंगे या हम हर्फ वो बोलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने तरीका वो जैसे जो मखरज है ना उसको आपने वैसे ही याद रखना है जैसे हमने सा को पढ़ा था. कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूज योर प्रीसाइज टिप ऑफ द टंग और मेक श्योर कि इट हिट्स द एजेस ऑफ द अपर फ्रंटल इंसाइजर्स, ठीक है. टिप आपकी दांतों से बाहर नहीं आनी चाहिए, ना दांतों के पीछे अंदर रहनी चाहिए. फिर इसी तरह से ऊपर और नीचे वाले दांतों में आपने टिप को नहीं प्रेस करना, उससे आपको साउंड यानी ना अच्छी टाइम देने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और कुछ इरिटेशन सी भी टंग के ऊपर फील होगी. और दूसरा ये कि बारीक ना यूज करें, मतलब थोड़ा फैला के, कि दो दांतों के एजेस इस्तेमाल हो, एटलीस्ट दो दांतों के आपके एजेस इस्तेमाल होने चाहिए. तो इसमें दोनों ही लेटर्स में एक ही तरह से हम करेंगे, इज इज कौल, इसी तरह से अवलमा, ठीक है, इज. तो ये जो साउंड है ये आपको आनी चाहिए विदाउट एयर. इन दो लेटर्स में भी अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत आराम से एयर ब्लो हो जाती है, इज करके साउंड आती है, या अफलामा नहीं, इज इज. एयर प्रेशर थोड़ा इनसाइड रखें, अव इज, ठीक है, इज. यानी अगर हम इसको बोलें इज जा जी इसी तरह से और वो के साथ, तो आपने इसको हम से लेटर्स के अंदर नहीं आने देनी। फिर इसके बाद सा, ज़ाल और वो, इसके बाद जो हमारे पास लेटर्स आते हैं वो भी टिप ऑफ टंग से हैं। और वो पेयर क्या है, सीन, ज़ा एंड सौद। अब फहसहु शख्सुन सकत में हम सौद और सीन को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये दोनों ही लेटर्स महमूस हैं, इनके अंदर एयर आ रही होती है, जबकि जा इसमें हम्स नहीं है। तो आप देखें कि जब एक ही मखरज से आप लेटर को बोलते हैं और ये लेटर अपनी क्वालिटीज में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो उसमें ये होता है कि जा में भी आराम से एयर ब्लो होने लग जाती है। तो सबसे पहले तो अगर हम जा का मखरज देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, आप जानते हैं ऑलरेडी कि इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी टिप अपर और बॉटम इंसाइजर्स के बिल्कुल पैरेलल आ जाती है और जो टिप है वो नीचे वाले दांतों की इनर प्लेट्स के साथ टच करती है। तो असल में होता यह कि आपके दांत ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, उनमें एक नैरो सा गैप होता है और टिप इज एक्चुअली बिहाइंड दिस नैरो गैप, ठीक है। तो वहां से साउंड प्रेशर से निकलती है, सीन और स्वाद में एयर भी निकलती है उसी स्पेस से, उसी नैरो एरिया से, लेकिन जा में सिर्फ साउंड वहां से पास होगी, एयर पास आउट नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको यूं नहीं बोलेंगे सुल सीलेट, यूं नहीं, सो में अब मैं एयर भी बाहर निकाल रही हूं, तो आप इसमें साउंड फील कर सकते हैं कि इस की तरफ जा रही है, थोड़ी ऑलमोस्ट सीन से रिजेंबल कर रही है। तो इसको आपने कैसे बोलना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हम जी साउंड बोलते हैं ना, अजी, इसके अंदर एयर कंट्रोल है, ठीक है। बाकी इसमें ऑब्वियसली साउंड है, साउंड अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, एयर नहीं आ रही, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट गो क्लोज टू द जी साउंड, बजिंग की जो साउंड होती है उसके करीब जाके तो इसको बोले अज, अजी, अजू, ठीक है, अज, यू नहीं बोलना, इसको इतना रिलैक्स ना छोड़े कि आपकी जो साउंड है ना उसके साथ एयर भी बाहर की तरफ निकले, ठीक है। जहर वाले लेटर्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि साउंड तो बाहर आ रही होती है लेकिन एयर बाहर नहीं आती, आप एयर को रोकते हैं, टिप से रोकते हैं, अगर आप रोकेंगे नहीं उसको तो वो ब्लो आउट हो जाएगी, ओके। फिर इसी तरह से ये तो हमारे टिप के सारे लेटर्स हो गए, ठीक है, सबको हमने देख लिया, जिनमें से टिप में हमने देखा नून और रॉ, ये दोनों जहर लेटर्स थे, फिर दाल एंड दो, ये जहर लेटर्स थे, फिर दाल एंड वो, ये जहर लेटर्स थे, और जा ये जहर लेटर था, ठीक है। तो ये टिप ऑफ टंग के लेटर्स थे जो कि जहर के साथ आने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हरूफ शफ़ाविया। हरूफ शफ़ाविया में हमारे पास दो मखारिज हैं, शफ़ातान में दो मखारिज आते हैं, एक वो लेटर्स होते हैं जिनमें दोनों लिप्स की इन्वॉल्वमेंट है और एक वो लेटर है जिसमें सिर्फ एक लिप की इन्वॉल्वमेंट होती है विद अपर इंसाइजर्स, ठीक है। तो ये दो मखारिज हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फा को, फा इज द ओनली मखरज, यानी एक डिफरेंट मखरज से फा आता है और इस मखरज से सिर्फ ओनली लेटर आता है विच इज फा। बॉटम इंसाइजर्स इस्तेमाल हो, सॉरी, बॉटम लिप इस्तेमाल होता है अपर इंसाइजर्स के साथ, तो फ्रंटल जो ऊपर वाले दो आपके फ्रंटल इंसाइजर्स हैं दांत, वो नीचे वाले लिप के वेट एरिया पे लगते हैं और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम्स है। जो लिप्स का जो दूसरा मखरज है वो है दोनों लिप्स से लेटर आता है, लेटर्स आते हैं। तो ये जो दोनों लिप्स से लेटर्स आते हैं, ये हमारे पास तीन लेटर्स हैं, वाओ, मीम एंड बा, और तीनों के तीनों लेटर्स जहर के साथ हैं। मीम में तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नून की तरह, ये नेचुरल जहर लेटर है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब अब मा, अब मी, अब मो, इसमें जहर ही होती है, इसमें हम्स नहीं हो सकती। वाओ के अंदर हम्स हो जाती है, इसमें आपने ध्यान रखना है, लेकिन वाओ में हम्स की एक बड़ी रीजन ये होती है इफ यू आर नॉट यूजिंग द मखरज, ठीक है। अ वा, सर्कल योर लिप्स, वा वा, हवा को बंद करके आप अपना हाथ अपने मुंह के आगे रख के चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें एयर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो आप फील करेंगे कि इसमें बिल्कुल एयर नहीं आ रही। अवा अवी अवू, ठीक है। और अगर आप इसको फा की तरह बोलते हैं वी साउंड से, जैसे वाव में ये बहुत कॉमन एरर होता है कि इसको डब्ल्यू के बजाय वी की तरह बोला जाता है, यानी दोनों लिप्स को सर्टल बनाने की बजाय इसको कैसे बोला जाता है, ऊपर वाले दांतों और नीचे लिप्स से, यानी वा वमा। तो अगर आप इसको वमा रॉन्ग मखरज से बोलेंगे तो इसमें हम्स जरूर आएगी। अगर आप इसका प्रीसाइज मखरज इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम्स नहीं होगी। जस्ट लाइक द या, या में मैंने आपको बताया था ना, मखरज जितना प्रीसाइज करेंगे हम्स नेचुरल कंट्रोल होगी, और वाव में भी ऐसा ही है, जितना प्रीसाइज मखरज करेंगे आपकी हम्स नेचुरल कंट्रोल होगी। द डिफिकल्ट लेटर इज बा, थोड़ा सा बा मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझे ये कॉमन एरर सुनने में मिलता है कि वो पढ़ते हैं लाइक बिस्मी बी बिस्मी, तो ये बी नहीं होगा, बी बिस्मी, थोड़ा एयर इनसाइड की तरफ, लिप से एयर को बाहर पुश करने के बजाय लिप से एयर को अंदर की तरफ पुश करें। और ये भी उन्हीं लेटर्स में से है जो कि स्ट्रांग हेड डिमांड करते हैं, जो कंप्लीटली रिलाय करते हैं ना, उन लेटर्स में से है। अब ये सारे लेटर्स नहीं थे, मैंने आपको बीच में कुछ कुछ लेटर्स के साथ मेंशन किया, तो वही स्ट्रांग रिलाय करते हैं। उनमें ये होता है कि मखरज का हेड बहुत स्ट्रांग होता है और फिर लिप का कम बैक हो रहा होता है, यानी मखरज का कम बैक होता है स्ट्रांगली, आप मखरज छोड़ते हैं तो उससे साउंड आपकी बहुत अच्छी आती है, जैसे हमजा था, कौफ था, जीम था, दाल, बो, और अब ये लेटर बा। मे बी आई मिस्ड वन और टू, लेकिन ये है कि ये वाले लेटर्स ज्यादा थे जिनमें आपकी ना यानी स्ट्रांग हिट के साथ आ रही है। तो बिल्कुल मीम की तरह आपने हिट नहीं करना, क्योंकि मीम का हिट थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू बा। ठीक है, तो बा में आप थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ हिट करते हैं। इंशाल्लाह ये जब हम नेक्स्ट क्वालिटी पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ हिट और साउंड से रिलेट करती है। ठीक है, तो बा में आपका हिट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मीम स्ट्रांग होना चाहिए। अब बा बी बू, इसको बी बीस करके नहीं, बी बिस्मी बिस्मिल्लाह, इसी तरह से अलबाबा, इसको अलबाबा यू नहीं, या अलबाबा बाबा, बहुत वीक करके नहीं, स्ट्रांग साउंड आनी चाहिए, अलबाबा बाबा। ठीक है, इस तरह से। तो और साकिन हो तो ऑफ कोर्स इसमें कलकला भी होगा। अब ठीक है, जैसे तबत यदा अबी अबी लहबी व तब, तो ये एक स्ट्रांग साउंड है इसकी बाउंस के साथ। इंशाल्लाह आज हम यहीं तक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहर वाले लेटर्स पूरे हो गए, तो हमारी फर्स्ट क्वालिटी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट क्वालिटी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जो कि शिद्दा है और उसका ऑपोजिट रखावा इंशाल्लाह। بارككم الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.